अल्हम्दुलिल्लाह, हमने मुआमलात के टॉपिक में अभी तक जो कुछ पढ़ा उसमें हमें आदाब और हकूक व फ़राइज़ में अपनी ज़ात के साथ मामला करना भी आ गया, मुआशी मामलात में भी कुछ चीज़ें देख लीं, ख़ानदानी मामलात भी। अब एक पहलू अगर मैं छोड़ भी दूँ तो इट्स ओके, क्योंकि इसकी जगह और भी है, लेकिन मैं इसलिए नहीं छोड़ूंगी कि आज के दौर में ख़ास तौर पे हम ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं। हर वो मामला जिसमें रुपया पैसा आता है, मुआशी मामलात, इकोनॉमिक इश्यूज़। हालांकि कुरान ने मर्द को अल-क़वाम के नाम पे पेश किया और वो सारी ही चीज़ों में चलता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों में ख़वातीन अपने माल की खुद मुकल्लफ़ हैं, मसलन ज़कात देना, आपके पास अगर कोई सोना चांदी है या किसी और सूरत में, तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर बाज़ औक़ात हालात का कुछ इस तरह का चक्कर होता है कि ख़वातीन को भी तिजारत करनी पड़ती है। एक बात, यानी अब लिखिए कि हम मुआशी मामलात यानी माली मामलात पे बात क्यों करें, इसलिए करें कि औरत अपने आप को इसे अलग नहीं रख सकती। इवन घर में मर्द जो माल लेकर आता है उसका भी बड़ा हिस्सा औरत ही के हाथों से इस्तेमाल होता है, या उसको पता होता है कि ये कहाँ से आया, क्या कुछ हुआ। तो ज़रूरत है कि हम इन सारी चीज़ों को भी समझें, इसलिए कि इस्लाम ने हमें किसी भी मामले में खाली नहीं छोड़ा, तन्हा नहीं छोड़ा। तो माल इंसान की ज़रूरत है। सूरत निसा में अल्लाह ताला ने माल को कय्यम कहा, यानी कय्यामन, ज़िंदगी कायम रखने का ज़रिया। ये सबको ही अंदाज़ा है कि हम इस दुनिया में माल के लिए नहीं जीते, लेकिन फिर भी हमें अपनी ज़िंदगी को मुनासिब तरीके पे इस्तेमाल करने के लिए माल की ज़रूरत होती है। माल की इस्लाम में क्या हैसियत है? वही जो गाड़ी में पेट्रोल या गैस की है। अच्छा पेट्रोल होगा, गाड़ी अच्छी चलेगी, झटके नहीं आएंगे, उसके इंजन पे बोझ नहीं होगा, और अगर कहीं से ख़राब तेल या डीजल डाल दिया जाए, यानी गाड़ी में पैसे बचाने के लिए डीजल डाल दिया जाए, तो गाड़ी में कचरा आ सकता है, ख़राबी आ सकती है। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए कि माल कहाँ से आया, किस चीज़ से हमने उसको इस्तेमाल किया, ये हमारी ज़िंदगी में इबादात की बेहतरी के लिए लाजिमो मलजूम है। माल के मुतल्लिक मामलात में हमें इसलिए भी बहुत ज़्यादा देखना है, सोचना है कि हम ये भी तो देखें कि अल्लाह सुबहाना ताला ने आपके मेरे लिए कोई भी फील्ड ऑफ लाइफ जो है वो अन अटेंडेड नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ताला ने माल जमा करने को अगर पसंद नहीं किया, लेकिन माल कमाना इबादत है। अल कासिबु हबीबुल्लाह, कासिब यानी मेहनती अल्लाह का दोस्त होता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ताजिर सिद्दूक, सच्चा ताजिर कल अंबिया और शुहदा के साथ होगा। ये सारे हमें इशारे अहादीस से भी मिलते हैं, कुरान से भी मिलते हैं। हर नबी जो था वो कमाता था, अपने हाथ से कमाई करता था। ये नहीं था कि उन्होंने दूसरों के ऊपर नज़रें रखी और ख़ुद कमाना अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, और जितना भी कोई कमा ले इससे रोका भी नहीं। लेकिन मना क्या है? माल कमाने को मकसदे हयात बना देना, ज़िंदगी का लुब्बे लुबाब माल बन जाए, ये चीज़ इस्लाम पसंद नहीं करता। तो लिहाजा अगर आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को और जो माल आया है उसका इस्तेमाल अच्छी जगह रखेंगे, इंशाल्लाह उससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। अब इसमें हम अगर माशी मामलात में देखें तो किसी भी ज़रिया जिससे माल आता है घर में, ऑफ कोर्स या वो तिजारत के ज़रिए आएगा या मुलाजमत के ज़रिए आएगा, विरासत में माल मिलेगा, औरत को हक महर में माल मिल जाता है, फिर इसी तरह से इंसान को कभी तोहफे तहाइफ की सूरत में कुछ मिल जाता है, कभी इनाम के तौर पे कुछ मिल जाता है। तो इस सारे माल को ज़ाया नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों को उनका माल ना दो जबकि उनके बाप दुनिया से चले जाएं, सूरह निसा के बिल्कुल आगाज़ में मसला मौजूद है। ऐसा क्यों किया गया कि वो बच्चे माल को ज़ाया कर देंगे? नासमझ औरतों या छोटी उम्र के बच्चों को उनका माल नहीं देना चाहिए, उससे बेहतर है कि आप उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें दे दें। तो इससे लगता है कि माल तो अच्छा है। किसी ने कहा, गालिबन सुफियान सॉरी का कॉल है, पहले दौर में माल बुरा समझा जाता था, लेकिन आज के दौर में माल ज़रूरत है, असल चीज़ उसका इस्तेमाल है। आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो आइए ज़रा एक एक करके हल्का हल्का सा देख लेते हैं। सबसे पहले तिजारत को देखते हैं। तिजारत के बारे में इस्लाम का क्या कानून है। पहली बात है कि तिजारत बहुत ही पसंदीदा अमल है। हर नबी ने तिजारत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत से पहले भी तिजारत ही करते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हो कपड़े के ताजिर थे। तिजारत में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल जाता है। हज़ारों या लाखों का मुलाजिम होने से बेहतर है कि तिजारत हो। वजह, मुलाजिम फिर भी किसी हद पे आके मजबूर हो जाएगा। पैसे लेता है तो उसको उसकी बात माननी पड़ेगी ना। हो सकता है नमाज़ों के औकात किसी बात से टकरा जाए, जुमे का खुतबा सुनने से महरूम रह जाए। जबकि जो आप मालिक है या तिजारत करने वाला है, वो वक्त की कैद से आज़ाद होता है। मन कर दे कौन क्या करेगा। और वैसे भी तिजारत के लफ्ज़ को अगर आप देखें ना, तो ट्रेडिंग है। कभी इधर से लिया, कभी उधर बेचा, पूरा वक्त दुकान खोल कर बैठने वाला कॉन्सेप्ट भी कोई बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जो चीज़ लोगों के दिलो दिमाग पे होती है ना, लोग उसी तरह सोचने लग जाते हैं। असल यह है कि तिजारत करनी चाहिए, मगर कैसे, शराइत क्या है। नंबर एक, हलाल चीज़ की तिजारत हो। फिर अमानतदारी से हो, झूठ ना बोला जाए, ज़खीरा अंदोजी ना की जाए, माल बेचने के लिए झूठी कस्में ना खाई जाएं। नफ़ा लिया जाता है, लेकिन इतना नफ़ा ना हो कि कुव्वते खरीद से बढ़ जाए। फिर इसी तरह से तिजारत में फेयर होना चाहिए। सौदा हाथ में आ जाए फिर तिजारत कीजिए। चीज़ है कोई नहीं, सिर्फ कागज़ों में ही वो चीज़ बिक रही है। फाइलें बेचना, लैंड की सूरत में आपने कई जगह देखा होगा, अभी कुछ भी नहीं है वहाँ, सिर्फ एजम्पशंस पे तिजारत नहीं हो सकती। चीज़ हाथ में हो, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी आपको मालूम है, फिर आप उसको बेच या ख़रीद सकते हैं। फिर इसी तरह अगर एक के साथ बात चल रही हो तो दूसरे को नहीं बेच सकते, जब तक कि अगला यस या नो ना कर दे। किसी एक को आप यस कह चुके तो फिर दूसरे को यस कहने से पहले इस पहले से इजाज़त लेनी होगी। इमाम बुखारी रहमहुल्ला एक बहुत बड़े ताजिर थे, लोग तो उनको इल्म से जानते हैं ना, माल भी बहुत था, दीन दुनिया दोनों थी उनके पास। एक दफ़ा को इनके पास ताजिर आया, उनकी किसी चीज़ का सौदा लगाया, कहा सोच के बताऊंगा। रात को सोचते रहे, इस्तखारा किया, 5,000 पे गालिबन कोई बात चल रही थी, इन्होंने दिल में सोच लिया कि दे दूंगा। सुबह जाकर जब दुकान पे बैठे, इससे पहले कि वो आता जिसके लिए दिल में सोचा, अभी उसको नहीं कुछ कहा, लेकिन दूसरे ने आकर उसी चीज़ की कीमत 10,000 लगा दी। तो इन्होंने क्या किया होगा, शुक्र किया अभी उसको नहीं दिया, नहीं, कहने लगे कि मैं किसी और को देने की नीयत कर चुका हूँ, और 5,000 रुपये उसको दे दिया जिसकी नीयत की थी, और उससे डबल नफ़ा नहीं लिया। बात समझिएगा, बहुत ईमान कड़ा रख के कारोबार करना चाहिए। कारोबार करें, बिजनेस करें, ट्रेडिंग करें, लेकिन फिर तकवा की लगाम के साथ। फिर इसी तरह दिखाना कुछ और बताना कुछ, ये नहीं करना चाहिए। हराम चीज़ की तिजारत नहीं कर सकते, हलाल चीज़ की तिजारत होगी। फिर इसी तरह से तिजारत के आदाब में एक ये भी अदब है कि दोनों ख़रीदने और बेचने वाला जब तक जुदा नहीं होता। ये सब चीज़ों के रेफरेंसेस मौजूद हैं, लेना चाहे ले ले, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम इस सारे टॉपिक को एक लाइट मूड में कवर कर लें। लेने वाला देने वाला भी जुदा नहीं हुआ, सौदाबाजी हो रही है, वापस करने का या लेने ना देने का इख्तियार दोनों को मौजूद है। एक दफ़ा सौदा तय होने के बाद दोनों अलग हो गए तो उसके बाद ये हक ख़त्म हो जाता है, फिर आप उस सौदे को बदल नहीं सकते। अब इन मुल्कों में रहते हुए आदत हो गई जी, 3 माह तक वापस कर देंगे और ये वो, जो आप सब जानते हैं। आप कहते हैं इसके कई सीक्वेंसेस हैं। अंधों की तरह जो कुछ लोग शॉपिंग करते हैं ना, बहरों की तरह बगैर सुने चीज़ें भरते रहते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, वापस कर देंगे, ना पसंद आए तो मना कर देंगे। इवन कुछ लोगों का तो ये वतीरा भी सामने आया, चीज़ें ली, इस्तेमाल की, 3 माह के अंदर वापस कर दी। कहीं ना कहीं तो झूठ होगा ना, पसंद आया ना आया, पूरा आया ना आया, ठीक था कि नहीं था। अगर वो इख्तियार दे के आपको ले के जाते हैं तो उनको ये पता भी नहीं होगा कि कुछ परसेंट लोग ज़रूर इसको मिसयूज़ करेंगे। यानी वो तो अपनी तिजारत के फेयर होने या अपनी क्वालिटी पर मान पे ये असूल बनाते हैं ना, लेकिन कई लोग उसको मिसयूज़ करते हैं। हर वक्त की शॉपिंग, हर वक्त की खरीदो फरोख्त और विंडो वॉचिंग जिसको आप कहते हैं, दुरुस्त नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। तो लिहाजा फिर क्या समझ आया, आपस की बाहमी रजामंदी से जो सौदा तय पा जाए वो दुरुस्त है। अच्छा, गलत काम करना हो, आगे एक अलग टॉपिक में इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा कवर करूँगी। क्या पता चला कि तिजारत करने के बाद एक इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे, उस माल को अच्छी तरह खर्च करे, अपने बच्चों पे, बीवी पे, ज़रूरियात पे लगाए, माँ बाप का हक पहचाने, रिश्तेदारों को उनका हक दे, और उसके बाद फिर जब वो माल मिल जाता है तो उसको जायज़ कामों में इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा इसराफ कर देना और उस कमाए हुए माल को अपने ही ऊपर लगाते रहना, ये भी पसंदीदा बात नहीं। शो ऑफ के लिए उस माल को खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें फिर बाद में मुआशरे में एक इम्बैलेंस बिहेवियर का इजहार करती हैं। फिर इसी तरह देखिए कि अगर आप सूरत बकरा को तरतीब से पढ़ रहे हैं, तीसरा पारा जहाँ से शुरू होता है, तिल का रसूल के बाद, कुरान की आयत अगर आपने तरतीब याद रखी हो, और नहीं रखी तो इंशाल्लाह आगे जाके याद आपको हो जाएगी। सबसे पहले खर्च करो, अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम मिन कब्लि यातियकुम यौमन ला बैयुन फीही वला खुल्लतन। याद है, माल की अमूमी बात है। खर्च की बात के साथ ही आयतुल कुर्सी है कि उस हस्ती को भी पहचान लो कि जिसके रास्ते में खर्च करने का हुक्म दिया जा रहा है। आप वो खर्च करते हैं तो अल्लाह के रास्ते के खर्च की बातें, खूबियाँ और उसके सीक्वेंसेस और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। साथ ही उसके बाद सदका देना, सदके की फजीलतों की बात है, यानी बेहतरीन इस्तेमाल है। अब दूसरी बात है कि सदका देना चाहते हैं, कोई लेना नहीं चाहता, किसी को पसंद नहीं आता, तो उसका अगला दर्जा कर्ज ले लो। कर्ज नहीं अच्छा लगता, लेना दे कोई देता नहीं, तो रहन ले लो, फ्लजिंग, यानी जिसमें आप कह लीजिए कि मॉर्गेज है, लेकिन उसमें बदतरीन सूरत जो है वो सूद की है। यानी सूरत बकरा का आखिरी हिस्सा अगर आप तरतीब से देखें, सबसे पहले खर्च अमूमी फी सबीलिल्लाह खर्च, उसके बाद आप सदका दीजिए बेस्ट सूरत, उसके बाद वर्स्ट सूरत सूद, फिर उसके बाद कर्ज, कर्जदार को मोहलत देना, कर्ज कोई देता नहीं तो रहन। गोया कि आप कह लीजिए कि एक अहम सूरत का अहतताम अल्लाह ताला ने माली मामलात से किया। और लफ्ज़ तिजारत अगर आप देखें ना, जो हम इस वक्त पढ़े हैं हदीसों में, तो पूरे बाब हैं अलबियू। हज़रत उमर अपने दौर में किसी को दुकान खोलने नहीं देते थे जब तक उसको हदीस के वो अबवाब नहीं पढ़ा लेते थे जिसमें तिजारत है। ये एक तवील टॉपिक है, कहीं सिर्फ ब्रदर सामने हो तो उनके लिए तो ये एक्सीलेंट टॉपिक होगा, क्योंकि तिजारत से पहले ये पढ़ लेना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में ख़राबी है, सोना बेचने चांदी बेचने की और तिजारत के रूल्स होंगे, जानवर हैं, लाइफ स्टॉक है, उसका और इंतज़ाम है, खाने पीने की चीज़ों के और रूल्स हैं, तो ये सब पढ़ने चाहिए। इस पे आप अपने हस्बैंड्स को, अपने बेटों भाइयों को माइल करें, कोई ऐसे स्कॉलर जो इस मौजू पे बात करते हैं उनको रिक्वेस्ट करें, या अगर उनके रिकॉर्डेड हैं तो उसको सुने, क्योंकि इसके बगैर बहुत बड़ा रिस्क है। और लफ्ज़ तिजारत कुरान में 9 दफ़ा आया है। सबसे पहली तिजारत क्या है, सूरत बकरा 16, फमा रबिहत तिजारतुहुम। ये कौन सी तिजारत है, क्या बिक रहा है और क्या खरीदा जा रहा है? इश्तरावुद्दलालत बिलहुदा, हिदायत को छोड़कर गुमराही खरीदी जाती है। तो जब आप नेकी के मौके को छोड़कर गुनाह का मौका अपना लें, या खैर के काम को छोड़कर शर के काम में लग जाएं, तो यह बदतरीन तिजारत होगी। फिर सूरत बकरा 282, यानी आखिरी रुकू शुरू होता है उसके बाद, इल्लान तकुना तिजारतन हादिरतन। आप कुछ चीज़ लेते हैं, आप यहाँ से निकले, वॉलमार्ट से कुछ ले रहे हैं, आप कहीं भी गए, पैसे दिए, चीज़ ली, इट्स ओके, कोई शक नहीं है, बट वो तिजारत जिसमें उधार हो उसमें गवाह बनाने की बात है। फिर आप देखिए कि सूरत निसा 29, इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादे मिनकुम, एक दूसरे के माल बातिल तरीके से ना खाओ। खा सकते हो कैसे? आपस की रजामंदी। तो ये शर्त है तिजारत में कि बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों राज़ी भी हों इस मामले में। फिर इसी तरह सूरत तौबा 24, अमवालु निकतरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा, वो तिजारतें जिनके मांद पड़ने का तुम्हें ख़तरा होता है। कारोबारी को हमेशा घाटे का खौफ लगा रहता है। अल्लाह कहता है ये चीज़ें तुम्हें अल्लाह रसूल और उसके रास्ते की जिद्दोजहद से दूर ना करें, यानी जॉब की खातिर नेकियों के मौके ना छोड़ो, कारोबार की वजह से नमाजें ना छोड़ो। फिर सूरत नूर 37, ला तुल्हीहिम तिजारतुन, नहीं गाफिल करती उनकी तिजारत किससे? अन ज़िक्रिल्लाह का लफ्ज़ आगे आएगा, तिजारत के साथ वला बैयुन। क्या पता चला, अच्छे ताजिर वो होते हैं जो अपनी नमाजें नहीं ज़ाया करते तिजारत और बै की वजह से। फिर सूरत फातिर 29, यरजू न तिजारत लन तबूर, एक ऐसी तिजारत का जिक्र है जो कभी भी पुरानी नहीं होगी, यानी अल्लाह के साथ सौदेबाजी। फिर सूरत सफ आयत 10, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, क्या ना बताऊँ तुम्हें एक ऐसी तिजारत, तुंजी को मिन अजाब नलीम, जो दर्दनाक अजाब से बचा ले, और वो कौन सी है? इस दुनिया के थोड़े दिन, थोड़ी ज़िंदगी को देकर आखरत के अबदी फ़ायदे लेना। और सूरज जुमा आयत 11 में तो जाकर पढ़ लीजिए, पूरा असूल बयान कर दिया। वह इज़ा राउ तिजारतन औ लहवन, जब वो तिजारत या कोई लाह चीज़ देखते, इनफ़द्दु अलैहा, एक ख़ास वाक़िया था जो पेश आया और उसको बुनियाद बनाकर सारी उम्मत की इसलाह कर दी। तो गोया कि आप ये कह सकते हैं कि इस बात में भी अल्लाह ताला ने आपको मुझे अलग नहीं किया। और ये आखिरी आयत जो बताई, इसमें दो दफ़ा लफ्ज़ तिजारत है, तो गोया कि 9 मुकामात हैं कुरान में तिजारत के। इसी में अब दूसरी चीज़ देखिए, सदका देना। सदका सिद्क से है, सिद्क सच्चाई को कहते हैं। आप जब किसी को सदका देते हैं तो सच्चे दिल से देते हैं, उपरे दिल से नहीं दे सकते। हमारे मालों का बेहतरीन इस्तेमाल सदका है। इसके ऊपर एक लेक्चर हुआ था, सदक़े की 40 अकसाम, सदका क्या है और क्या नहीं है। यानी आप हैरान होंगे कि छोटी छोटी बातें सदका है। किसी को मुस्कुरा के देखना भी सदका है, जानवर चाहे खा पी जाए तो वे भी सदका है, और इसी तरह से अगर किसी का कोई नुकसान हो जाता है, अल्लाह पे राज़ी रहिए, आपका नुकसान अल्लाह ताला ने पूरा कर ही देना है, ये भी सदका है। तो हमेशा याद रखिए कि तकलीफ़ों में, दुखों में अल्लाह ताला आपको डालकर कई ऐसे सदकात आपसे ले लेता है जो कि हम नहीं थे करने वाले। फिर इसी तरह बहुत सारी हदीसें इंशाल्लाह उसको आपके साथ जोड़ेंगे, लेकिन यह है कि सदका करते वक्त असल बात है कि जो माल हो वो हलाल का हो। इन अल्लाह तय्यिबुन ला युक़बलु इल्ला तय्यिब। फिर इसी तरह सदका देते वक्त देख लीजिए कि जिसको दे रहे हैं उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह ना करें, देकर ना पछताएं ना जतलाएं। फिर जिस्म के जोड़ों का भी सदका होता है। सही रिवायत इब्ने हब्बान की कि बंदा सुबह उठकर जब नफिल पढ़ता है, यानी चाश के जो नफिल है, ये भी सदका है। फिर इसी तरह माल नहीं है तो सुबहान अल्लाह ही, अल्हम्दुलिल्लाह ही, अल्लाह अकबर कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये भी सदका है। हर जोड़ का सदका है जो कई अज़कार है उनसे अल्लाह के हुक्म से पूरा हो जाता है। फिर इसी तरह से सदका देकर वापस नहीं लिया जा सकता। आले मोहम्मद यानी सैयद लोगों को सदका नहीं दिया जाता, वो सदके का माल नहीं खाते। फिर इसी तरह से बेहतरीन सदका सदका जारिया है। अपनी ज़िंदगी में वो काम कर जाइए जो आपके बाद आपके लिए सदका जारिया बन जाएंगे। और पीछे भी हमने बात की थी ज़कात और सदकात में कि कैसे माल बढ़ता है, कि अल्लाह घोड़े के बच्चे की तरह उसको पालता है। क्या सदके में सिर्फ काला बकरा ही देना चाहिए, मसूर की दाल, अंडा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी तार जिगर वाले के साथ नेकी कर दें, सदका इंसान को दे सके ना तो इंसान को दें। जानवर परिंदों को अल्लाह खिला रहा है, छत पे डालना और बलाओं का टलना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक हमारे अपने जहन की बातें होती हैं। तो बहरहाल इस पे चूंकि बहुत कुछ कहा बोला सुना जाता है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। आगे है कर्ज देना और लेना, इसके आदाब और इसके मैनर्स ये बहुत ज़रूरी हैं। इस पे एक पूरी बुक पढ़ाई थी अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में। आप उसका खुलासा क्या था? कुरान की आयत व इज़ा तदायन तुम भी दैनन, तवील तरीन आयत कुरान की कर्ज के बारे में। आज उम्मत जबरदस्ती कर्जों में फंस गई। अल्लाह के नबी ने कर्ज में फंसने को पसंदीदा नहीं किया, इल्ला ये कि कोई मजबूर हो जाए। फिर कर्ज लेते देते वक्त दो शर्तें, मुद्दत का तायुन और गवाह। दो मर्द हैं तो ठीक है, नहीं तो एक मर्द के साथ दो औरतों की गवाही भी आ सकती है। किसी को कोई कर्ज देता है तो हर दिन उतना माल सदका करने का अजर है। मुद्दत गुजर जाए वो ना दे सके तो मोहलत दीजिए। कुरान में फनदीरतुन, मोहलत के बाद के जो दिन है हर दिन उससे डबल सदका देने का अजर मिलेगा। यकीन करें बेहतरीन सूरत है कि आपके फालतू माल जो आपके पास पड़े हों, किसी भी जरूरत के लिए इंसान माल जमा कर सकता है, इसमें शक नहीं है। हज करेंगे, घर बनाएंगे, बच्चों ने आगे पढ़ना है, आप वक्ती तौर पे उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट की बेहतरीन सूरत क्या है बोलिए? कर्ज है। आपका क्या गया, बल्कि आपकी चीज़ अगला संभाल रहा है। फिर एक मसला इसमें लिख लीजिए कि कर्ज पे जो माल दिया उसकी ज़कात बहरहाल आप देंगे, वो आपका माल है कोई नहीं तो क्या करे, जब वो कर्ज वापस आएगा तो सारे सालों की ज़कात जमा करके आप उसको देंगे और इसका अजर बहुत ज़्यादा है। फिर इसी तरह से ख्वाहिशों के नाम पर ऐसा कर्ज कि जिसमें सूद भी शामिल हो जाए, इसकी कतई इजाज़त नहीं है। जब कर्ज की बातें हैं तो फिर क्रेडिट कार्ड का इशू भी आता है, क्योंकि इस्लाम ए टू जी है तो जिक्र तो हर चीज़ का ही करना ही चाहिए। क्रेडिट कार्ड अलाउड है, शर्त एक है, विद इन लिमिट पे कर दें। डेबिट में तो किसी को शक नहीं होगा, क्रेडिट में भी यही असूल है। आपके बैंक में पैसा है, आप पे कर सकते हैं, उतनी शॉपिंग कर लीजिए, एंड पे आपको उतने ही पैसे जितने को देने पड़े, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन वो ऐसी खूबसूरत डील्स एंड ऑफर्स शो करते हैं और आप कहते हैं इट्स ओके ले लो ना, पैसे हैं दे देंगे, यानी ख्वाहिशें पनपती हैं कर्ज के नाम पे। नुकसान जो होता है वो आज आपको पता है, बैंक करप्सी, कर्जों के बोझ में नुचड़ी हुई कौम, अरबपति शख्स दुनिया से जाता है और कर्जों में डूबा होता है। फिर घर कर्ज पे, गाड़ियाँ कर्ज पे, सोफे कर्ज पे, ये अल्लाह के साथ एक किस्म की बगावत है। आगे रहन की बात आ रही है, रहन क्या है? मॉर्गेज। वैसे कोई नहीं कर्ज देता, आप पे एतबार नहीं करता, कोई जानता नहीं है, या उसको डाउट है कि आप अदा नहीं करेंगे तो आप अपनी चूड़ियाँ उतार के कहते हैं ये रख लीजिए, मैं बेचती नहीं, आपको देती हूँ, मुझे पैसे दे दें, जब मैं पैसे ले आऊँ तो आप मेरी चूड़ियाँ मुझे वापस करें। इसको रहन कहते हैं, इसकी भी इजाज़त है। कुरान की आयत से तो लगता है सफ़र के दौरान इसकी इजाज़त है, लेकिन नबी सल्लम के अपने अमल से दिखता है आपके पास एक आपकी जो ज़रा थी वो रहन रखी हुई थी जब आप दुनिया से गए, तो रहन रखा जा सकता है। लेकिन फिर उसके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ जिस पे अगले का कुछ खर्च हो, मसलन कोई गांव में शख्स है, भैंस है उसके पास, वो बेचना नहीं चाह रहा लेकिन वक्ती ज़रूरत पड़ गई, फसल काटनी है या लेनी है या बीज लेना है, वो अपनी भैंस देता है किसी को, क्या आप इसको कुछ दिन रख लें और मैं आपको पैसे बाद में दूंगा, ये ले जाऊंगा। अब वो भैंस को खिलाएगा ना, पिलाएगा, उसका चारा डालेगा, तो उसके बदले में वो उसका दूध इस्तेमाल कर सकता है। अदरवाइज किसी की चीज़ जो रहन में, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे मसाइल हैं। और फिर उसके बाद आखिरी चीज़ इसमें है सूद, अस्वद से काला, स्याह, ब्लैक मनी। सूद कहते हैं स्याह को, अरबी में इसको रिबा कहते हैं। रिबा कहते हैं गिल्टी को, ट्यूमर, ऐसी ग्रोथ जो अनयूजल हो। ऐसे देखिए एक्सपेंशन क्या है, आप दो लफ्ज़ इंग्लिश के लिखे ना, एक्सपेंड होना, ये घर है, ये बिल्डिंग है, इसको आप एक्सपेंड करते हैं तो बड़ी होती जाएगी ना। और अगर इस कमरे में आप पहले एक चीज़ लाएं फिर दूसरी लाएं, इधर ढेरी लग जाएगी ना। हीप करना, पाइल अप करना, तो जगह तंग होगी। रिबा कहेंगे तो असल में ये अनयूजल ग्रोथ है। अक्सर मैं इसमें बात करती हूँ कि कैंसर क्या है, आपके सेल्स की इरेगुलर ग्रोथ। बच्चे का हाथ छोटा होता है, आपका हाथ बड़ा, ये एक नॉर्मल चीज़ है। सेल सारे छोटे छोटे बड़े होते गए, हाथ भी बड़ा होता गया। लेकिन अगर एक ही सेल ऐसा हो कि जिसके ऊपर छोटे से सेलों के और क्लस्टर्स बनते जाएं, एक वक्त आएगा वो उस असल सेल की भी ताकत ले लेंगे तो गिल्टी बनेगी, जब वो गिल्टी उस जिस्म में पूरी नहीं आ रही, ब्लड दबेंगी कुछ होगा तो वो कैंसर बन जाता है। सूद कैंसर है, सूद की हर किस्म हराम है, ये यूजरी हो, इंटरेस्ट हो, आप इसका कोई नाम लगा लीजिए, ये अमीर को अमीर तर और गरीब को गरीब तर करता है। सोसाइटी में पोलराइजेशन शुरू हो जाती है, पैसे पे पैसा खींचना। हज़रत अली ने जो सूद की तारीफ़ की है वो कहते हैं कि कुल्लू कर्दिन या तजर्र नफा, हर कर्ज जो अपने साथ नफा लेकर आए। कर्ज दिया आपने किसी को $1,000, वापस जब आया तो $1,100, वो 100 जो है वो सूद है। आज पूरी मईशत इसी असूल पे चल रही है, इसीलिए आज दुनिया में डिसऑर्डर है। अगर सूद ना हो तो मोनोपोलीज नहीं चलेंगी, थर्ड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड और सुपर पावर, ये सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगी जिस दिन सूद खत्म होगा। और याद रखिए कि सूद के बहुत से नुकसान हैं। कारोबार करते हैं ना, आम लोगों को फ़ायदा होता है, लोगों को जॉब्स मिलती हैं, गरीब जो है बेचारे रोज़गार पाते हैं, अमीरों के पास एक मुसबत काम होता है, फैक्ट्री लगती है, 100-200 लोगों को जॉब मिलती है। सूदखोर क्या करता है, अपने ही पैसे को घर बैठ कर डबल से ट्रिपल होता देखता है और फिल्में देखता है और घर वालों के लिए बोझ बनता है। नुकसान क्या होगा, घरेलू नुकसान। अमूमन ऐसे लोग कामचोर होते हैं, सारा दिन घर में है तो वो साइकिक बन जाते हैं, बीवियों पे नज़र, बच्चों पे शक, घर में मदाखलत। नुकसान क्या होगा, सब कुछ पीछे होगा, लिहाजा ऐसा नुकसान जो होगा फिर उससे फ़ायदा नहीं होगा। आज कोई कुछ भी कह दे, इंटरेस्ट कह ले, बट इट्स नॉट इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी अन इंटरेस्टेड। आप उम्मते मुस्लिमा को कम अज़ कम एक बात पे तो राज़ी होना है कि जिस पे अल्लाह और उसके रसूल से जंग हो, अल्लज़ीन याकुलून और रिबा ला यकूमून इल्ला कमा यकूबुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस्सी, कि जिस तरह शैतान छू जाए किसी को और वो बावला हो जाता है, सूद खोर भी बावला हो जाता है। रही बिकम क्रेजी, पकड़ेगा इधर से उधर से, कब्रों से निकलते हुए भी यही हालात होंगे, ऐसी दीवानगी होगी। इस पे इतना कुछ है, आप सिर्फ इस एक आयत की तफसीर सुन लीजिए, हर सेट में से सुन लीजिए। और ये वो चीज़ है कि जिसको आपने मैंने अपनी ज़िंदगियों से खुरच के निकालना है, अगर हम चाहते हैं कि सुकून और इत्मीनान हो। और ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी ने मेराज की रात देखा तो बड़े बड़े मटके हैं उनमें सांप है, कहा ये पेट है और इसमें आग है, कहा सूद खोर है। और सूद का लेना देना लिखना, आ किलुहू व मुँह किलुहू का तिबुहू व शाहिदू, चार लफ्ज़ हैं, आकिल खिलाने वाला, मोकिल खाने वाला, शाहिद उसकी गवाही देने वाला विटनेस, और कातिब उसकी डॉक्यूमेंटेशन करने वाला। इसी बेस पे फिर हर वो जॉब और काम जो वो जायज़ नहीं है जिसमें किसी ना किसी जगह इंटरेस्ट आ जाता है। और याद रखिए 40 साल के अंदर वो इंडस्ट्री ख़त्म हो जाती है अमूमन, अगर अल्लाह ने उसमें किसी मुसलमान को डाल दिया, क्योंकि अल्लाह ने उनको आखिर पाक करना है। तो अपने आप को अपनी नस्लों को इस सूद के निज़ाम से बचाने की ज़रूरत है। ये जब तक रहेगा दुनिया में अमन नहीं आएगा, चैन नहीं होगा। इसके मुआशी नुकसान भी हैं, मुआशरती नुकसान भी हैं, इसमें इतना कुछ है कि आप सही मुस्नद किताबों से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आज आपको कोई कह दे आज के दौर का तो सूद सूद ही नहीं, ये तो बिज़नेस की डील्स हैं, अल्लाह के नबी का तो कुछ और था, तो फिर मैं तो वही बता सकती हूँ जो मुझे पता है, मुझे ज़्यादा नहीं आता, जितना आता है उसके मुताबिक। मुझे किसी जगह से भी कोई एक क्ल्यू नहीं मिला, कोई ज़ईफ़ रिवायत नहीं मिली, कोई मन घड़त तो मुझे देखनी भी नहीं है अल्लाह के हुक्म से। मैं क्यों आपको लोरियाँ दूँ और मैं किसी की दुनिया संवारते हुए उस अपनी आखिरत क्यों बिगाड़ूँ। अगला आखिरी टॉपिक जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आप मामलात में है वो है हलाल और हराम के आदाब। इसमें से ही आपको बहुत सारी बातें सूद की भी और समझ आ जाएंगी बाकी चीज़ों की। तो सवाल क्या है कि हलाल क्या है, पाक और तैयब हलाल है सिवाय इनके जिनको अल्लाह ने हराम करार दिया, दलील है सूरत माईदा 4। सवाल, हराम से क्या मुराद है, वो चीज़ें जिनको अल्लाह की शरीयत में हराम कहा, यानी अरबी में कहते हैं असलुल अशियाई मुबाहुन, हर चीज़ अपनी असल से जायज़ है, इल्ला मगर जिसको अल्लाह ने कह दिया कि हराम है, सूरह बकरा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलाल और हराम के क्या असूल है, व्हाट इज़ हलाल, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट दिस। तो पहला असूल तो मैंने बोल भी दिया कि असल में हर चीज़ हलाल है, जिसके बारे में कुरान की कोई आयत या हदीस नहीं मिलती ना, वो हलाल है। यानी गाजर हलाल है कि हराम? हलाल है। मूली हलाल है कि हराम? हलाल है। इसी तरह से बाकी चीज़ें भी, ठीक है। हराम के लिए दलील मौजूद है। फिर दूसरा असूल क्या है? वो चीज़ जिसको अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल ठहराया वो हलाल है, जिसको हराम ठहराया वो हराम है। सवाल है, जिनके बारे में कुछ नहीं बोला सकूत, वो माफ़ है। ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत 375 पार्ट 2 में। नेक्स्ट थिंग लिखिएगा हलाल हराम के आदाब में, कि हलाल या हराम का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। जो बंदा हलाल को हराम या हराम को हलाल करेगा, बड़ी जुर्रत है, बड़ी जसारत है, वो हदों से तजावुज़ करेगा, आदि का लफ्ज़ कुरान में आता है उसके लिए, इसकी बात मानना, इसकी इत्तबा करना ये जायज़ नहीं है, और उसके काम पर रजामंदी का इजहार करना शिर्क के मुतरादिफ है। सूरत शूरा 31। चौथा असूल लिखिएगा, हलाल को हराम और हराम को हलाल करार देना शिर्क है। इस्लाम ने ऐसी तमाम चीज़ों की मजम्मत की है। हदीस सुन लीजिए पूरी, मैं बोल देती हूँ। सही मुस्लिम 2865। अल्लाह ताला फरमाता है, यानी हदीस कुदसी है, मैंने अपने बंदों को दीन हनीफ पर पैदा किया, लेकिन शैतानों ने इन्हें बहकाया और इन पर उन चीज़ों को हराम कर दिया। किन चीज़ों को हराम कर दिया? जिनको मैंने हलाल किया था, और इन्हें हुक्म दिया था कि वो मेरे साथ इनको शरीक ना ठहराएं, और उन्होंने शरीक करा दिया, हालांकि अल्लाह ने इसकी कोई सनद नहीं दी। यानी इस हदीस से साफ तौर पे लगता है कि जैसे शिर्क फिल ज़ात है ना, अल्लाह की ज़ात में शिर्क, इस तरह शिर्क फिल हुक्म भी है। अल्लाह ने कह दिया कि शराब हराम है, आपको मुझे क्या लगे? किसी को हक नहीं है कि शराब को हलाल करने का कोई चोर दरवाज़ा ढूंढे। पांचवा असूल लिखिएगा हलाल और हराम का, हराम चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत अपने बंदों से, उसने इसलिए शराब को हराम किया कि वो नुकसानदेह है। जुआ इसलिए हराम है कि वो नुकसानदेह है। पेग इसलिए हराम है कि वो नुकसानदेह है। सूरत बकरा 219। फिर अगला असूल देखिए, हलाल हराम से बेनियाज कर देता है। सूरत निसा 28। यानी जब ज़िंदगी में हलाल आता है ना, तो फिर कोई भी हराम चीज़ दिल में नहीं आती। ये अल्लाह की तरफ से रहमत है। कई लोग दीन से सिर्फ इसलिए दूर है कि पेट में चीज़ें ठीक नहीं जा रही, दिल से रग़बत ही ख़त्म हो जाती है हराम के साथ नेकियों की। फिर जो चीज़ हराम का बायस बने वो भी हराम है। ये सातवां असूल है, जो चीज़ हराम का बायस बने वो भी हराम है। बस आप कहते हैं शराब पीते नहीं, बेच लेते हैं तो पीने लगेंगे ना। आप कहते हैं शराब सिर्फ लेकर इधर से उधर भेज दें, शराब पीकर कोई क्या करेगा? नमाज पढ़ेगा, रोज़े रखेगा? ज़रा सोचे, एक बंदा मैं इतना क्या गुजरा हूँ कि मैं वो गंदी चीज़ बेच रहा हूँ कि जिसको ख़रीदने के बाद जाकर या तो जिना होगा या मार धाड़ होगी, खून खराबा होगा, और क्या कहें कि अल्लाह बरकत दे मेरे माल में, यानी ज़्यादा शराब बिके और ज़्यादा लोग ले, ऐसा नहीं हो सकता। आठवां असूल लिखेगा कि हराम के लिए हीले करना भी हराम है। मुस्नद अहमद 2279। और आप इधर असहाबे सब्त का किस्सा भी लिख लें। सूरत अलाराफ में तो बहुत डिटेल है उसकी, सूरह बकरा में भी है। हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ने का बहाना बना लिया, शराब तो नहीं बेच रहे थे, मछलियाँ ही थीं, लेकिन हीला क्या किया? जाल जुमे को लगाया और खोला इतवार को। फिर अगला नवां सूर लिखिएगा, नेक नियति हराम को हलाल नहीं करती। मुस्लिम 1015। फिर इसी तरह हराम में मुब्तला होने के अंदेशे से मुश्तबहात से भी रुक जाइए। शुबे में डालने वाली चीज़ों से को भी छोड़ दें, इस डर से कि कहीं हराम में ना पड़ जाऊं। जो बाउंड्रीज के करीब जाता है, डर होता है ना कि दूसरी तरफ निकल जाए। और ये रिवायत बुखारी की है 52। और आखिरी बात, हराम सब के लिए हराम है। बुखारी 3475। एक आखिरी सवाल है कि कभी कोई ऐसी सूरत भी है कि हराम हलाल हो जाए? यस। और वो क्या है? फमन तुर्र गैर बागिन वला आद फला इस्मा अलैह। फिर जो शख्स मजबूर हो जाए, ना वो बगावत करने वाला हो ना हद से बढ़ने वाला हो, तो फिर इस पर कोई गुनाह नहीं, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला रहम वाला है। और ये इस्तरार क्या है? शौक का इस्तरार नहीं है कि खुशबू आ रही है उस खाने की जो बड़ा पसंद है, नहीं, ये है जिसमें जान बचाने का ख़तरा हो। तो क्या पता चला फिर? अल्लाह के नबी को भी इख्तियार नहीं। सूरत तहरीम पहली आयत, या अय्युहन नबी लिमा तो हर रिमा मा हल्लल्लाह खुलक, आप क्यों हराम करते हैं उस चीज़ को जो अल्लाह ने हलाल की। क्या था? शहद, जिसमें एक खुशबू मिली हुई थी, हलाल थी ना, इसलिए कि बीवी की खुशी है तो मैं इसको नहीं करता। तो जब अल्लाह का नबी अपने वक्त पे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, वो किसी चीज़ को हराम करे और अल्लाह कुरान में नाजिल कर दे, तो फिर आज आपको मुझे क्या, इसको भी समझ लीजिए। अभी तक जितनी बहस हुई है ना, ये हराम के ऊपर ज़्यादा बात हुई है ना। जिस तरह आप किसी हराम को हलाल नहीं कर सकते ना, हलाल को भी हराम नहीं कर सकते। आज ये भी एक इशू है, तकवे के नाम पे, दुनिया दिखावे के नाम पे, और सादगी के नाम पे, और कुछ और नाम पे, कई हलाल चीज़ों को लोग हराम कर देते हैं दीन पे आते ही। नुकसान क्या है? जो हराम नहीं छोड़ पा रहे, बताइए वो हलाल छोड़ने के लिए दीन पे आएंगे? एक नट शेल में दीन बंद हो जाएगा अगर आप अपनी पसंद नापसंद और अपने जहनी उफक के साथ किसी भी हलाल को हराम करार दे देंगे। खाइए, पिए, पहनिए, ओढ़िए, हंसिए, रिश्तेदारों के हकूक दीजिए, मुसलमान को कैदी नहीं होता। तो क्या पता चला, जो अल्लाह ने दिया उस पर राजी रहिए। और एक आखिरी चीज़, जो शीट के निस पे एंड पे डाल के एक लाइन आप हेडिंग लिख लीजिए, और इसमें शीट में है नहीं है लेकिन आप करें, क्योंकि मामलात का टॉपिक फिर इसी पे क्लोज करूँगी। मामलों की बेहतरीन सूरत जो उम्मते मुस्लिमा पे फ़र्ज़ कर दी गई, दावत इल्लाह। अब आपको पता चलेगा कि दावत इस्लाम में कहाँ खड़ी है। ये मामलात है, हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है कि दूसरे इंसानों को अल्लाह की दावत दें। दावत, जिसको आप तबलीग कह लें, इबलाग कह लें, प्रीचिंग कह लें, टीचिंग कह लें, ये मुसलमानों की ज़िंदगी की अलामत है। जो मुसलमान दीन की दावत देता है, दावत इल्लाह का प्रचार करता है, गोया कि वह अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा करता है। वो उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा पे अमल करता है, इस्लाम की वुसअत के लिए कोशिशें करना, गैर मुस्लिमों को इस्लाम मिल जाए, दूसरी तरफ मुसलमान अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जीने लग जाएं और उनका बिगाड़ ख़त्म हो जाए और उनकी नस्लें महफूज हो जाएं। याद रखिए, जिस कौम और मिल्लत ने दावत इल्लाह छोड़ी, उनकी नस्लें भी इस्लाम से चली गईं, दूर हो गईं। दावत के बग़ैर आप इनफरादी तशख़्स कायम रख ही नहीं सकते। मुसलमानों के वजूद का जरिया है कि दूसरों को भी इस्लाम की दावत दें। सूरह मायदा 67 लिख लीजिए, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लगत रिसालतहू। ए नबी, जो कुछ आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया, इसको पहुंचा दीजिए, और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने इस पैगाम को नहीं पहुंचाया। क्या पता चला? दावत इल्लाह दीन का मरकजी नुक्ता है, लिख ले, फोकल पॉइंट। इसी के लिए अम्बिया की बेइज्जत हुई, इसी के जरिए उन्होंने अल्लाह के अहकामात बंदों तक पहुंचाए, और अम्बिया के बाद इस फरीजे को उलमा ने हर दौर में अंजाम दिया। अगर इससे गफलत बरती जाए, लोग ना इल्म हासिल करें, ना इसे अमली हैसियत दें, तो नबूवत के मकासिद फौत हो जाते हैं, दीन की बुनियादें कमज़ोर पड़ जाती हैं, मुआशरे में गुमराही और बिगाड़ फैल जाता है, अल्लाह के बंदे हलाकत में मुब्तला हो जाते हैं। और सबसे बड़ा इसका नुकसान क्या है कि इस कौम के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा, ये एहसास ही ख़त्म हो जाता है कि हम गुमराही की तरफ बढ़ रहे हैं। और नतीजा क्या निकलेगा कि जिनको अम्बिया की विरासत मिली वो उसके अहल साबित ना हुए, और उनके बाद बुरी औलादें उनके पीछे आ गईं। नुकसान क्या हुआ कि मुसलमानों की तरक्की रुक गई। क्यों आज इस्लाम उस तरह नहीं फैल रहा जैसे उमर, अबू बकर और उस्मान दूसरे अदवार में हुआ? और याद रखिए, ऐसे दौर में जो इस खला को पुर करेंगे ना, अल्लाह के यहाँ उनका बड़ा ही मुकाम है। सवाल लिखिए, क्या दावत इल्लाह फ़र्ज़ है? जी फ़र्ज़ है, उम्मते मुस्लिमा पर फ़र्ज़ है। दलील दीजिए तो लिख लीजिए, आल इमरान 104, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदून इलल खैर। और तुम में ज़रूर एक ऐसी जमात या गिरोह हो जो नेकी की तरफ बुलाए और भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, और ऐसे ही लोग कामयाब होने वाले हैं। हदीस में भी दलील मौजूद है। सही मुस्लिम 177 अबू सईद अल खुदरी से रिवायत, आपने फरमाया तुम में से जो कोई बुराई देखे इसको अपने हाथ से बदल दे। हाथ से बदलने की ताकत ना हो तो जुबान से, और अगर इसकी भी ताकत ना हो तो दिल से। और ज़ालिका अदअफुल ईमान, ये सबसे हल्का ईमान है। अबू बकरा से एक रिवायत है बुखारी 1741, कुर्बानी का दिन था, खुतबा दिया आपने, फरमाया पता है आज कौन सा दिन है? कहा जी। क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? जी। कहा फिर गवाह रहो, और जो शख्स जहां मौजूद है वो गैर हाजिर शख्स को पहुंचा दे। कितने लोग जिन्हें बात पहुंचाई जाती है खुद सुनने वालों से ज्यादा बात को समझने वाले होते हैं। और अल्लाह के नबी की रिवायत बुखारी 1739, यकीनन आपकी उम्मत को यही वसीयत है कि मौजूद लोग गैर हाजिर लोगों तक बात पहुंचा दें। हाफिज इब्ने हजर अल अस्कलानी का नाम पीछे भी आया, कहते हैं हदीस से मालूम होने वाली बातों में एक ये भी है कि इल्मे दीन की तबलीग फ़र्ज़े किफ़ाया है, और बाज़ लोगों के हक़ में फ़र्ज़े ऐन हो जाती है। याद रखिए कि दावत इल्लाह उम्मत का एजाज़ है। उम्मत को इज़्ज़त मिलेगी कब? जब वो ये काम करेगी। आले इमरान 110, कुन तुम खैर उम्मत नुखरीजत लिन्नास, यू आर द बेस्ट नेशन। अल्लाह ने जिम्मेदारी दे दी पहले अम्बिया को। सूरत सबा 28, वमा अरसलना का इल्ला काफ्फतन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। और माईदा 67, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अब किस पे है? हर एक पे। सवाल पैदा होता है क्या दाई बनने के लिए नाम, उस्ताद, आलिम, मुफ्ती, स्पीकर, स्कॉलर ये लकब रखने लाजमी है? तो लाजमी नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कुल्लुकुम राइयुन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिहा। हर एक चरवाहा है और हर एक से उसकी रईयत के बारे में पूछा जाएगा। हर बंदा अपने हिसाब से अल्लाह के दिए हुए रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके इस काम को करेगा। सूरत निसा 165, नबियों का काम भी यही था कि वो खुशखबरियां देते और डराते। इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं दावत इल्लाह रसूलों और इनके पैरोकारों का मिशन है। अल्लाह हमें भी इसी में शामिल कर दे। इब्ने बाज रहमहुल्लाह इस दौर की शख्सियत थे, चले गए चंद साल पहले। कहते हैं कि गिरोह रसूल मखलूक की रहनुमाई करने वाला था, वो हिदायत के इमाम थे और सब जिन्नो इंस को अल्लाह ताला की इबादत और इताअत की दावत देने वाले थे। अल्लाह ने इनको मबूस फरमाकर बंदों पर इनायत और शफकत फरमाई, इनके ज़रिए राह हक़ को वाज़े किया, सिराते मुस्तकीम को उजागर किया ताकि लोगों के लिए हक आशकार हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आखिरी बात करूँगी, इस पे पूरी पूरी किताबें पढ़ी हुई हैं। याद रखिए पढ़ने के बाद पढ़ाने के बीच में तरबियत है। सवाल क्या है कि क्या दावत इल्लाह रैंडमली कैसे करेंगे हम ऑर्गेनाइज्ड? याद रखिए असरात तब मुरतब होते हैं रूट टू फ्रूट। आज क्यों नहीं दीन फैलता दिख रहा बावजूद इसके कि बहुत सारे स्पीकर्स हैं? वजह यह है कि हिकमत के साथ उदु इला सबीली रब्बी का बिल हिकमती, यानी सूरत नहल के आखिरी दो आयतें हैं वही नोट कर लें इधर, तो बेस्ट तरीका यह है कि इस तरतीब को सामने रखना ज़रूरी है। अभी इस ट्रिप में भी हमने दावत के मौजू पे एक लेक्चर किया है, मुझे लग रहा है बिल्कुल शुरू में हुआ होगा। इसकी ज़रूरत बहुत है, अगर आप और मैं नहीं रोकेंगे ना तो वो बुराइयाँ हमारे घरों में भी आ जाएंगी और आप खुद देखेंगे। और इस पे तो इतनी डिटेल्स है कि किस तरीके से ये सारे काम हुए। अगर कश्ती में सुराख करने वालों को आप नहीं रोकेंगे तो पानी कश्ती में आएगा, सब डूबेंगे। बुखारी की रिवायत 2686 का खुलासा है। आज और मैं आप खामोश बनकर चले जाएंगे तो फिर आने वाले लोग हमें माफ़ नहीं करेंगे, और दुआएं कबूल नहीं होती जो दावत इल्लाह नहीं करता। बहकी की रिवायत अहमद की भी हज़रत आयशा से कि लोगों अच्छे काम करो, बुराई से रोको, वरना तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, बेशक तुम करोगे भी। फिर इसी तरह से क्या औरतें भी ये काम करेंगी? बिल्कुल करेंगी। उमर किसकी दावत पे मुसलमान हुए? बहन की। बुखारी की रिवायत है, हज़रत उमर का एक कॉल है, कहते हैं मक्का में हम लोग औरतों को बिल्कुल हेच समझते थे, मदीना में निस्बतन इनकी कदर थी, लेकिन जब इस्लाम आया और इनके मुतल्लिक आयात उतरी तो हमें औरतों की कदर व मंजिलत महसूस हुई, यानी औरत को इस्लाम ने इज्जत दी। फातिमा बिनते खत्ताब की दावत पे उमर मुसलमान हो गए। असदुल गाबा किताब है 592 जिल्द नंबर 5 है, मारूफ रिवायत है। फिर आप देखिए कि उम्मे शुरैक दौसिया एक खातून थी, कुरैश की औरतों में जितना इस्लाम फैला कहते हैं इनकी मख्फी दावत की वजह से फैला। अभी मक्का में मर्दों में तो काम शुरू था ना, तो ये औरतों में काम कर रही थी। आले साबा की रिवायत है 466 जिल्द 8, यानी औरतों ने इब्तदाए इस्लाम से लेकर आगे तक अपना हिस्सा डाला। उम्मे सुलैम की रगबत से अबू तलहा मुसलमान हो गए, ये भी रिवायतें सारी मौजूद हैं। इकरमा अपनी बीवी उम्मे हकीम की दावत पे मुसलमान हुए, मौता किताबुन निकाह 1143। गज़वे उहद में काफिरों ने जब हमला किया तो उम्मे अम्मारा एक ऐसी खातून थी कि जो इस काम पे खड़ी हो गई, अल्लाह ने उनसे भी काम ले लिया। हज़रत आयशा, हफ्सा और उम्मे सलमा, उम्मे वरका पूरा कुरान पढ़ चुकी थी, हाफिज़ा ही थी। ये सारी फतहुल बारी की रिवायत है 52 पार्ट 9। उम्मे वरका बिन अब्दुल्ला कुरान पढ़ी हुई थी, तो जब औरतों में जमा होती तो इनको लोग क्वेस्ट करते और अल्लाह के नबी ने इनके लिए एक मौज़न मुकरर किया कि ख़वातीन में मिलकर नमाज अदा कर लिया करो। और अबू मूसा अशरी कहते हैं जब भी कभी हमें कोई बात मुश्किल पेश आई तो हम हज़रत आयशा से जाकर पूछते थे, ये कभी ना हुआ कि हमें फिर उनसे ख़बर ना मिली। तो ये एक अपनी जगह पूरा टॉपिक है, याद रखिएगा उम्मत के लिए लाजिम है इस वक्त कि हम सब अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ की अहमियत को समझें। ये रैंडम काम नहीं है, डॉक्टर बनने के लिए तो स्टेप्स हों और किसी को दीन सीखने सिखाने के लिए कोई तरीका ना हो, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल काम है। इनफरादी तौर पे हम अपने घरों में ये काम करेंगे, आप और मैं करेंगे, इज्तमाई तौर पे ये काम इज्तमाईत में होता है। आप वो काम करें, वैसे काम करें जैसे करने से दूसरे गुनाहगार ना हों बल्कि उनको फ़ायदा हो। और ये वो चीज़ें हैं कि जिसको एक दफ़ा अगर आप और मैं समझ जाएँ तो बात समझ आती है। यकीन करें मैंने बहुत सोच समझ के साथ ये मामलात के टॉपिक को कवर किया। अभी भी कुछ चीज़ें ज़रूर होंगी जो अभी इंशाल्लाह हम आगे करेंगे, लेकिन मुझे तो ये सारा पढ़ते पढ़ाते हुए ऐसे ही महसूस हो रहा है कि अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने आपके मेरे लिए ये क्या खूबसूरत दीन रखा है, ज़रूरत है इस बात की कि आप और मैं इसको देखें और समझें और इस पे अमल की कोशिश करें। नफिल तो वैसे भी पढ़ना ही चाहिए, लेकिन शुक्र पे अगर एक सजदा भी हम कर लेना कि अल्लाह तूने हमें मुसलमान बनाया, इस्लाम दिया, फिर हमारे लिए इस्लाम को इतना आसान कर दिया, तो मुझे यकीन है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।